इकबाल के सामने अब सबसे बड़ी परेशानी थी रहने के लिए घर। वो चाहता था कि इसी मोहल्ले में कोई छोटा सा किराए का घर मिल जाए, क्योंकि यही उसकी नौकरी थी, यही उसकी पहचान। सालों की मेहनत से उसने यहाँ अपनी जगह बनाई थी, उसे छोड़ना आसान नहीं था। मगर जो वो सोच रहा था, वही बात खलील ने रेहान तक पहुँचा दी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। तभी इकबाल का फ़ोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, रेहान। इकबाल ने फ़ोन की तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो फ़ोन उठाना नहीं चाहता था, लेकिन नूर ने बिना कुछ कहे फ़ोन उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। सबकी नज़रें अब उसी फ़ोन पर टिक गई थीं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से रेहान की ठंडी और घमंडी आवाज़ आई। मुझे पता चला है कि तुम लोग रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो, वो हल्का सा हंसा। मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम सब आराम से आ जाना। रहने के लिए शानदार इंतज़ाम कर दिया है मैंने। उसकी आवाज़ में एहसान नहीं, ताना था। इकबाल का सब्र टूट गया। अपनी ये बकवास बंद कर रेहान, उसने गुस्से से कहा। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, फिर रेहान की आवाज़ और ठंडी हो गई। मैं तो बस मदद कर रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें अभी भी अपनी औकात याद नहीं आई। इकबाल की मुठ्ठियाँ भींच गईं। मुझे डराने की कोशिश मत कर, उसने दांत भींच कर कहा। रस्सी जल गई है, मगर बल अभी बाकी है। रेहान हल्का सा हंसा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। इतना सुनते ही नूर से रहा नहीं गया, उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद दूसरी तरफ रेहान अपने फ़ोन को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। लगता है अब इन्हें डर लगने लगा है, उसने खुद से कहा। उस वक्त घर में साकेत भी मौजूद था। दुबई जाने से पहले वो आखिरी बार सबसे मिलने आया था। नूर और उसकी फैमिली के साथ उसके रिश्ते अब काफ़ी हद तक सुधर चुके थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इस बार वो सच में उनकी मदद करना चाहता था। कमरे में तनाव भरा सन्नाटा था। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नूर ने चुप्पी तोड़ी। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इकबाल गहरी सोच में था। करता हूँ कुछ, उसने धीमे से कहा, मगर उसके दिमाग में अभी भी साफ प्लान नहीं था। अचानक नूर ने ठोस आवाज़ में कहा, हम मुंबई जाएंगे। इकबाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कह रही हो तुम नूर, हम उन्हीं लोगों के शहर में जाएंगे? ये ठीक नहीं है। और वहाँ रहेंगे कहाँ? मेरी नौकरी यहाँ है। नूर बिना घबराए बोली, मेरी नौकरी का इंतज़ाम हो गया है। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। कैसी नौकरी? इकबाल ने हैरानी से पूछा। मुझे एक ऑनलाइन एकेडमी से ऑफ़र मिला है, नूर ने समझाया। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और रहने का इंतज़ाम भी वही लोग करेंगे। साकेत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर आप अपनी चिंता छोड़िए, नूर अब खुद खड़ी होना चाहती है। बात चिंता की नहीं है, इकबाल ने सख्त आवाज़ में कहा, मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगा। नूर उसकी तरफ बढ़ी, उसकी आवाज़ अब नरम थी मगर फैसला मजबूत। प्लीज़ अब्बा, मुझे जाने दीजिए। इकबाल चुप रहा। मैं ना किसी को धोखा दूंगी और ना खुद धोखा खाऊंगी, नूर ने आगे कहा। मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, कब तक डर डर कर जिएंगे हम? उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। अगर मुझे ये मौका मिला है तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी डर की नहीं, एक बड़े फैसले की थी। मुझे कल जाना है, साकेत ने धीरे से कहा, अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। इतने में सीढ़ियों से उतरते हुए खलील नीचे आ गया। असल में उसे बाद में पता चला था कि साकेत आया हुआ था, इसलिए वो चुपचाप सुनने चला आया था कि आखिर चल क्या रहा था। खलील को देखते ही साकेत ने तुरंत बात घुमा दी। मैं कल दुबई जा रहा हूँ, उसने सहज बनते हुए कहा। अगर आपको अपने शहर जाना है तो मैं रास्ते में छोड़ सकता हूँ, वो थोड़ा रुका फिर बोला। मेरे एक दोस्त का घर खाली पड़ा है, आप लोग वहाँ आराम से रह सकते हैं। इकबाल ने एक पल के लिए खलील की तरफ देखा, जैसे समझ रहा हो कि वो सब सुन रहा है। फिर उसने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है, हम कल तुम्हारे साथ ही चलेंगे, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सुल्ताना बेगम ने भी हामी भर दी, हाँ यही ठीक रहेगा। ये सब सुनकर खलील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कि उसे बड़ी जानकारी मिल गई है, लेकिन असल में इकबाल और बाकी लोग जानबूझकर ये सब उसके सामने बोल रहे थे। वो चाहते थे कि खलील के जरिए रेहान तक गलत खबर पहुंचे और नूर को उसकी नज़रों से दूर ले जाया जा सके। खलील जैसे ही बाहर निकला, उसने तुरंत फ़ोन मिलाया। वो लोग मुंबई आ रहे हैं, उसने रेहान को बताया। दूसरी तरफ रेहान ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, उसने धीमे से कहा, तो आने दो। उसकी आवाज़ में अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से तैयार हो। पीछे पीछे नज़र रखना, उसने खलील से कहा, इस बार मैं उन्हें सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। उधर माहिरा का अभी अभी उसका तलाक हुआ था। जुबैदा बेगम चाहती थी कि वो इद्दत पूरी करे, घर से बाहर ना निकले, मगर इस बार उसने अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानी। वो चुपचाप गेस्ट हाउस चली गई। अगली सुबह इकबाल, सुल्ताना बेगम, नूर और साकेत टैक्सी में बैठकर शहर से निकल रहे थे। गली के लोग दरवाजों पर खड़े होकर उन्हें जाते देख रहे थे। पीछे से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लगता है अब अपनी लड़की का निकाह करने जा रहे हैं। एक किराएदार ने ताना मारा, घर तो पहले ही छिन गया, अब क्या बचा है इनके पास। दूसरी आवाज आई। ये बातें खलील के कानों तक भी पहुंची। उधर खलील थोड़ी दूरी बनाकर उनकी टैक्सी का पीछा कर रहा था। उसकी नजरें हर वक्त उन्हीं पर थीं। साकेत और इकबाल दोनों ये समझ चुके थे। पीछे वही है, साकेत ने धीमे से कहा। इकबाल ने शीशे में देखा। हमें प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। टैक्सी एयरपोर्ट के करीब पहुंचने लगी, तभी ट्रैफिक का जाम लग गया। खलील की गाड़ी उसी जाम में फंस गई और यही मौका था। एयरपोर्ट पहुंचते ही सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। नूर ने तुरंत बुर्का पहन लिया और बिना समय गवाए बाहर खड़ी दूसरी टैक्सी में जा बैठी, जो पहले से ही बुलाई गई थी। साकेत भी तुरंत अंदर की तरफ पड़ गया। इधर इकबाल और सुल्ताना बेगम वापस उसी टैक्सी में बैठ गए। कुछ ही मिनटों बाद खलील हड़बड़ाता हुआ एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा। उसने उनकी टैक्सी को रोक लिया। वो लड़की कहाँ है, उसने घबरा कर पूछा। नूर कहाँ गई, इकबाल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। दुबई चली गई साकेत के साथ, इतना कहकर उसने ड्राइवर से कहा। चलो, टैक्सी आगे बढ़ गई और खलील वहीं खड़ा रह गया हैरान। उसने तुरंत फोन मिलाया। वो चली गई। कौन? दूसरी तरफ से रेहान की तेज आवाज आई। नूर साकेत के साथ दुबई चली गई है, खलील ने जल्दी जल्दी कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तुम पागल बना रहे हो मुझे, रेहान गुस्से से बोला। तुमने ही कहा था वो लोग शहर आ रहे हैं। आए थे, मगर मुझे नहीं पता था कि नूर अचानक निकल जाएगी। रेहान का गुस्सा उबल चुका था। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस से सीधे निकला। फ्लाइंग दुबई, उसने ड्राइवर से कहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, नूर को ढूंढना। उसे पूरा यकीन था वो दुबई गई है और इस बार वो उसे ढूंढ ही लेगा। सादिया अपने कमरे में बैठी थी, चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसका हाथ अनजाने में उसके पेट पर चला गया। आने वाले बच्चे का ख्याल ही उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। उसी खुशी में उसने फोन उठाया और अपने भाई फैजान को कॉल लगा दी। हाँ बोलो, किस लिए फोन किया, फैजान की आवाज आई। सादिया हल्के से हंसी। मुबारक हो, तुम मामा बनने वाले हो। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या, फैजान चौंका। सादिया की आवाज अब और भी आत्मविश्वास से भर गई। और सुनो, जो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से गई थी उसे भूल जाओ, अब तो इस खानदान की हर चीज मेरे कदमों में होगी, वो रुक कर बोली। मैं भी ताई अम्मी की तरह अपनी औलाद के दम पर इस घर में राज करूंगी। फैजान की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें सच में लगता है कि ताई अम्मी का राज औलाद की वजह से है,
उसने गंभीर आवाज में कहा। उनका असर इसलिए है क्योंकि उनके शौहर उनकी हर बात मानते हैं। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और रेहान वो ऐसा आदमी नहीं है। सादिया ने तुरंत बात काटी। अब जब तुम नूर से निकाह करने जा रहे हो तो सब बदल जाएगा। फैजान पूरी तरह चौंक गया। क्या बकवास कर रही हो, किसने कहा कि मैं नूर से निकाह कर रहा हूँ? तो फिर, सादिया की आवाज तेज हो गई, तुमने तलाक क्यों दिया, उसी के लिए ना? फैजान ने गहरी सांस ली। तलाक उसने खुद मांगा था सादिया, मैंने सिर्फ उसे मान लिया, और मेरा और नूर का कोई रिश्ता नहीं है। कुछ पल की खामोशी, फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। और एक बात, अपने शौहर पर इतना भरोसा मत करो। सादिया का दिल हल्का सा धड़क उठा। क्यों, उसने घबरा कर पूछा। फैजान ने धीमे मगर ठंडे लहजे में कहा, तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या करने वाला है। फोन कट गया। सादिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रह गई। जो खुशी अभी उसके चेहरे पर थी वो धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, रेहान आखिर करने क्या वाला है।